इंसान और हैवान में क्या फ़र्क है? हार्वर्ड स्टीवेंसन ने अपनी किताब डू लंच और बी लंच में इस सवाल का जवाब यूं दिया है। इंसान और हैवान में बुनियादी फ़र्क यह है कि इंसान अपने मुस्तकबिल को बदलने की सलाहियत रखता है, जबकि हैवान ये सलाहियत नहीं रखता। मुझे इससे पूरा इत्तेफाक है। जिन हालात में हैवान करोड़ों साल से रहते आए हैं, उन्होंने कभी इन हालात को नहीं बदला। वो अपने हालात को बदलने की सलाहियत ही नहीं रखते। वो अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं, या फिर दूसरे इलाकों में हिजरत कर जाते हैं, या फिर मर जाते हैं। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम में बाहसियत एक इंसान ये सलाहियत मौजूद है कि हम अपने हालात को, चाहे वो कितने ही ख़राब क्यों ना हो, बदल सकते हैं। हमारा मुस्तकबिल हमारे अपने ऊपर इन्हिसार करता है। वो कौन सी एक चीज़ है जिससे दानिशमंदी सीखी जा सकती है? किसी ज़माने की बात है कि एक बादशाह ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो ऐसा कोई जुमला बताएं जिससे दानिशमंदी यानी विजडम सीखी जा सकती है। इसके आदमियों ने दुनिया से हज़ारों किताबें जमा करीं, उनको पढ़कर और बहुत बहस व मुबाहसे के बाद जो जुमला मंतखब किया वो ये था, देर इज़ नो फ्री लंच। मैं इसका तर्जुमा इस तरह करूँगा कि दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, यानी कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर हम ये समझते हैं कि हमें कीमत अदा किए बगैर कोई चीज़ खुद ब खुद मिल जाएगी, तो हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोगों को जो कुछ भी मिला है वो खुद ब खुद नहीं मिल गया। लोगों ने इसके लिए जद्दोजहद की है, अपने आप को तालीम याफ्ता बनाया है और अपने हकूक़ के लिए जंग की है। अगर आपके मुल्क में हालात सही नहीं हैं, तो गौर करें कि आपने या आपके वालदैन ने इन हालात को बदलने के लिए क्या किया है। बाज़ औक़ात एक नस्ल को आने वाली नस्ल के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। करोड़ों मरतबा ये बात साबित हो चुकी है कि इंसान को हर वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए वो कोशिश करता है या जिसकी कीमत वो अदा करने को तैयार है। देर इज़ नो फ्री लंच। दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। उम्मीद और यकीन। ये 1994 की बात है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन ने मुझे सुबह 10 बजे बुलाया था ताकि वो मेरी किताबों को देख सके और अगर से पसंद आए तो उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के सिलसिले में बातचीत कर सके। मेरा न्यूयॉर्क जाना बहुत कम होता था, इसलिए मुझे सुबह के वक्त ट्रैफिक का अंदाज़ा नहीं था, मगर मेरा ख्याल था कि मैं वहाँ एक घंटे में पहुँच सकता हूँ। चुनाचे मैं अपने घर से, जो कि न्यूजर्सी में था, वक्त पर पहुँचने के लिए 1.5 घंटा पहले निकल गया। न्यूयॉर्क के करीब पहुँच के मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी गाड़ी ट्रैफिक में ज़्यादती की वजह से काफ़ी आस्ता चल रही है और मैं शायद वक्त पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी नहीं पहुँच पाऊँगा। मैं दिल ही दिल में पछता रहा था कि आखिर क्यों मैं और जल्दी घर से नहीं निकला, और उम्मीद कर रहा था कि वक्त पर पहुँच जाऊँगा। मैं गाड़ी में बैठा अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा था और मुझे लफ्ज़ उम्मीद से सख्त नफरत सी होने लगी। मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी तकरीबन आधे घंटे लेट पहुंचा। जब मैंने डायरेक्टर को सॉरी कहा तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, न्यूयॉर्क में आमतौर पर ट्रैफिक ऐसा ही होता है। एक छोटी मीटिंग के बाद इसने मुझे कुछ दिनों के बाद फिर सुबह 10 बजे आने को कहा ताकि वो अपने असातज़ा से मेरे किताबों के बारे में राय ले ले। मैं देर से पहुँचने की वजह से दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा था और मैंने तहिया किया हुआ था कि मैं आइंदा कभी उम्मीद पर काम नहीं करूँगा। चुनाचे दूसरी मीटिंग के दिन मैं घर से 8:30 बजे के बजाय 6:30 बजे निकल गया ताकि मैं उम्मीद के बजाय यकीन के साथ वक्त पर वहाँ पहुँच जाऊँ, चाहे ट्रैफिक कितना ही ख़राब क्यों ना हो। मैं तकरीबन 8 बजे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी पहुँच चुका था और डायरेक्टर के कमरे से ज़रा दूर बैठकर 10 बजे का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक वो कॉफ़ी लेने के लिए वहाँ से गुजरा और मुझे इतनी जल्दी देखकर हैरान हुआ। मैंने कहा कि मैं ट्रैफिक के रश से बचने के लिए जल्दी आ गया हूँ और 10 बजे तक यहाँ इंतज़ार कर सकता हूँ, मगर डायरेक्टर मुझे अपने कमरे में ले गया और मीटिंग जल्दी शुरू कर दी। इस वाक्य की वजह से मैंने उम्मीद पर दुनिया कायम है के मुहावरे को इस तरह बदल दिया है। उम्मीद पर दुनिया कायम है मगर यकीन से चल रही है, इन लोगों के यकीन से जो हर किस्म के हालात के बावजूद कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। वो एक बात जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ये गालिबन 1981 की बात है। ये मेरा अप्लाइड फिज़िक्स में पहला सेमेस्टर था। क्योंकि मैंने BSc तक उर्दू में इम्तिहान दिए थे, मेरे लिए इंग्लिश में पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। अप्लाइड फिज़िक्स से मुझे वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ इस वजह से मैंने अप्लाइड फिज़िक्स में दाखिला लिया था कि इसमें जॉब मिलने के मौके बहुत थे। उस वक्त मेरे जहन में ये ख्यालात आ रहे थे कि या तो मुझे अपने पसंदीदा मज़मून हिसाब में मास्टर्स करना चाहिए या फिर तालीम छोड़कर कोई जॉब तलाश करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को मास्टर्स करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती थी, इसलिए मुझे मास्टर्स करने का भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। मैं 3 दिन तक सही तरह नहीं सो सका। बाज़ औक़ात कोई फ़ैसला करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम बन जाता है। आखिरकार मैंने अपने टीचर रियाज साहब से मशवरा करने का फ़ैसला किया। रियाज साहब मेरे पसंदीदा टीचर थे, انہوں نے نہ صرف مجھے نویں اور دسویں میں نہایت محبت سے پڑھایا تھا بلکہ بی ایس سی تک حساب میں وہ میری مدد کرتے رہے تھے بغیر کسی معاوضے کے۔ جب میں نے ریاض صاحب کو بتایا کہ میرا ارادہ یا تو حساب میں ماسٹرز کرنے کا ہے یا پھر جاب کرنے کا، تو انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ظفر تم حساب میں ٹرانسفر تو لے لو، مگر میں تم کو بتا دوں کہ تم حساب میں بھی ماسٹرز نہیں کر سکو گے۔ میں نے ریاض صاحب کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں حساب میں آپ کے بہترین شاگردوں میں سے ایک ہوں، آخر میں کیوں حساب میں ماسٹرز نہیں کر سکتا؟ ریاض صاحب نے بغیر کسی جھجک کے کہا، اس لیے کہ تم نے پیچھے ہٹنا سیکھ لیا ہے۔ جب ایک مرتبہ کوئی شخص پیچھے ہٹنا سیکھ جائے تو پھر وہ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ریاض صاحب کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سر میں اب ماسٹر ضرور کروں گا اور اپلائیڈ فزکس میں ہی کروں گا۔ دو سال کے بعد میں اپلائیڈ فزکس میں فرسٹ ڈویژن میں ماسٹرز کر چکا تھا۔ حالانکہ میں نے اپلائیڈ فزکس میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے کبھی اس فیلڈ میں جاب نہیں کی، مگر ریاض صاحب کی بات اور اپلائیڈ فزکس میں ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کی فتح نے مجھے جو سبق سکھایا، وہ کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کافی تھا۔ تھینک یو ریاض صاحب۔ کتاب انقلاب 2000، کیا پاکستانی کامیابی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پڑھنے کے لیے getup.org.pk وزٹ کیجیے۔